अब यहां से जो अगला वाक्य मैं आपको शुरू के वजाहत में सुना चुकी हूँ, अब मैं कोशिश करूंगी कि सिर्फ इन आयतों को एक एक आयत के तौर पे पढ़ते जाएं, ताकि फिर इंशाल्लाह एंड पे इसमें से अब निकलना। हमने पूरे आखिरी हिस्से को इकट्ठा ही तकरीबन पढ़ना है, फिर कहानी समझ आएगी। देखिएगा आयत 246, अलम तारा, क्या नहीं तुमने देखा, वही अंदाज है, इलल मलाई मिम बनी इसराइल, सरदारों की तरफ बनी इसराइल के, मला कौन होते हैं, जिनकी दहशत से दिल भरे हुए हो। मीम लाम हमजा, मला कहते हैं भरने को। हम पढ़ेंगे गालिबन दूसरे पारे की आखिरी आयत में भी आएगा ना, मिलल अर्थ, तो भरने को कहते हैं, जैसे जाम भर जाए, पैगाम पैमाना भर जाए, कुछ भी भर जाए। सरदारों को सरदार क्यों कहते हैं मला, क्योंकि उनके रोब से दिल भरे होते हैं बंदों के, ठीक है, वही बात हो गई मला, ठीक है। फिर उसके बाद कुराने पाक में ये लफ्ज बहुत मुख्तलिफ तरह से आता है, लेकिन अभी बस इतना लिख लीजिए, वो मिकदार जिससे कोई चीज भर जाए, और मला हो गए शुरफा, रईस, अकाबिर वगैरह, मलाए आला, और रसूलों के मुकाबले में अमूमन जो मुस्तकबिरीन होते हैं ना, उनके लिए लफ्ज मला का आता है। खैर, मिम बनी इसराइला, बनी इसराइल के बाद, बनी इसराइल में थे, मिम बाद ही मूसा, मूसा के बाद कितना अरसा बाद, 300 साल बाद तकरीबन, इस कालुली नबी यिल्लहुम, जब उन्होंने कहा अपने नबी से, कौन से नबी थे उस वक्त उनके पास, शमोइल जी, जब उनके 300 साल का गुजरा, तो उन्होंने फिर उस वक्त जिस नबी को कहा, उनका नाम क्या लिखा है आपको, देखिए जो उस वक्त के नबी थे ना, उनका नाम नहीं बताया गया, बस एक नबी थे, लेकिन जो उनके कहने पे अल्लाह ने भेजे थे ना, वो हजरत शमोइल थे, ठीक है। खैर, कोई भी थे, नामों से कोई फर्क नहीं इतना पड़ता। खैर, नबी से क्या कहा, ए बसलना मलिकन, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम लड़ाई करें अल्लाह के रास्ते में। इसे एक बात तो ये लिख लें साइड पे अभी, कि स्ट्रांग लीडरशिप के बगैर जिहाद डिक्लेयर नहीं होता। हर बंदा सर उठाकर अपनी मर्जी से किसी जगह जाकर बम नहीं फेंक सकता। इस्लाम में इज्तमाईयत की बड़ी अहमियत है, तो आज के दौर का एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि स्ट्रांग लीडरशिप की बजाय हर बंदा अपने तौर पे जिहाद डिक्लेयर करने के शौक में होता है। खैर, कहने लगे कि लीडर होगा तो हम उसको मिलेंगे और उसके साथ लड़ेंगे अल्लाह के रास्ते में। अब नबी का जरा कंसर्न देखिए, काला हला सही तुम, कहा क्या ऐसा तो नहीं होगा। याद है आपको भेजिए असा के, मैंने आपको 4-5 लफ्ज लिखाए थे, एक क्या था, उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, क्या इन कुतिबा अलैकुमुल किताल, अगर फर्ज कर दिया जाए तुम पे, कुतिबा के बाद क्या आ रहा है, अला, फर्ज किया, अगर तुम पर जिहाद या किताल फर्ज कर दिया जाए, अल्लाह तो कातिलो, तो तुम नहीं लड़ोगे। ये इंसानों का वीक पॉइंट है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। जिनकी आस पे आप कोई काम शुरू करते हैं, काम तो शुरू हो जाता है, वो नहीं होते। याद रखिए, बहुत कुछ कहने की बजाय थोड़ा सा करके दिखा दे। अगर आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं किसी भी जगह, बातें करके कुछ नहीं होगा। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे सबको जमा करें, मुसलमान आपको वो मशवरे देंगे, बच्चों के स्कूल होने चाहिए, औरतों की तालीम होनी चाहिए, अपने मुसलमानों के बैंक होने चाहिए, ये वो छोटी बड़ी बातें, फिर उसके बाद कहेंगे अब थक गए, लाओ पिज्जा निकालो और रात को जाके सो जाएंगे। और जिनके साथ करें वो कहेंगे अच्छा चलें कल फजर पे मिलते हैं सब, पहली मीटिंग सुबह फजर पे होगी, तो लीडर साहब खुद ही होंगे, इल्ला माशाल्लाह। याद रखिए, लिखे दिल के जज्बों से ही बात लोग सोच लेते हैं, बड़े मजहबी हैं, हमारे दिल में बहुत इस्लाम का दर्द है, जब तक अमल करके नहीं दिखाएंगे गवाही नहीं बनेगी। बातों से क्या होता है, बातें तो सभी करते हैं। यहां उन्होंने बात की, नबी ने अकलमंदी से पहले ही बता दिया कि वैसे तुम कह तो रहे हो, मैं करवा भी देता हूं तुम्हारे लिए, बादशाह मबूस भी हो जाएगा, बट तुम नहीं निकलोगे, काम तो होगा बट काम करने वालों में तुम नहीं होगे। कौम का जवाब सुनिए, कालू, वो कहने लगे, वो मान लेना भाई, क्या हो गया हमको, हाउ इज इट पॉसिबल, ये अंदाज है, क्या हम इतने गए गुजरे, ये मुराद है, अल्लाह नुकातिल फी सबीलिल्लाह, क्या हम अल्लाह की राह में किताल ना करें, वकद उखरिजना मिन दियारिना वअबनाइना, جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. مراد کیا کہ دشمنوں نے ہمارے بیٹوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا, یا اپنے ملکوں سے خوف کے مارے بھاگے ہوئے تھے, تو کیا اب ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے؟ اچھا, حالانکہ یہاں چھوٹی سی ایک سائڈ پوائنٹ لکھنا چاہیں کہ دیکھیں نیت کا فطور آ گیا ادھر. فی سبیل اللہ کام وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے کرے, اس میں مال اور بیٹوں اور گھروں کی محبت آ گئی ہے. ہمارا اسلام پیس آف لینڈ کے لیے جہاد ڈکلیئر نہیں کرتا. زمین کا یہ ٹکڑا ہمارا ہونا چاہیے اور ملک کا یہ حصہ تمہارا نہیں ہمارا ہو. اسلام ڈزنٹ لائک دس. اسلام کہتے تم رکھو اس کو, بٹ اس میں اسلام کو نافذ کر دو. ٹیک کیئر تم کرو, لیکن ادھر اسلام کا نظام چلے. آج بھی دیکھیے 50 سال سے زائد ایک زمین کے ٹکڑے پہ مسلمان لڑ رہے ہیں, اور اگر سیاسی قبضہ مل بھی جاتا ہے نا مسلمانوں کو, تو وہاں سے شرک کے اڈے تو پھر بھی کوئی نہیں ختم ہونے. پہلی ساری زمین سے آپ نے کتنے کو شرک کے اڈے ختم کر لیے, جو آپ نے زمین کے اس ٹکڑے سے بھی کر لینے. اس لیے 50 سال ہو گئے وہ زمین کا ٹکڑا آپ کو مجھے نہیں مل رہا. نیت خراب ہے. ادیاری نہ ابنا ہی نہ, بچوں اور گھروں کی محبت میں جو جہاد کیا جاتا ہے نا, وہ جہاد نہیں ہوتا. بہرحال اب دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ہوا کیا. فلما کتب علیہم القتال, پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی, یعنی ان کے کہنے پہ, ان کے مانگنے پہ, ان کے مطالبوں پہ یہ سب کچھ کر دیا گیا, تولو سب پھر گئے, منہ پھیر گئے, ٹرن بیک, الا قلیلا منہم, مگر تھوڑے سے بچے. آپ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں جو اس وقت کے نبی کو محسوس ہوا ہوگا. اور تولا میں آپ کو پتا ہے کہ ارادہ نہیں, ارادہ ہے تھوڑا سا مڑنا. تولا یہ کہ میں یہاں سے منہ پیچھے وائٹ بورڈ کی طرف کر لوں. سارے ہی چلے گئے چند ایک. اور میں آپ کو ایک جملہ بول دوں, اللہ جانتا ہے کہ میں پورے شعور سے یہ جملہ بولوں گی, کہ الا قلیل ہی اصل میں قیمتی ہیں. الا قلیل, یہ جو قلیل ہے نا یہی قیمتی ہیں. بعض دفعہ آخری دو دھاگے کپڑے کے وہی بچا لیتے ہیں پورے تھان کو. ایک ہی کھڑا ہو جاتا ہے, میں ہوں نا, چلیں بسم اللہ کریں. یہاں اصل میں مسلمانوں کو اب ڈرایا جا رہا ہے کہ آج تم بھی اٹھتے بیٹھتے نبی سے کہتے ہو جنگ چاہیے, بدلہ لیں, یہ وہ, پتہ چلا کہ اگر جنگ ہو گئی تو تم بھی نہ پیچھے ہو جاؤ. پیچھے ہم 216 میں پڑھ چکے, کتب علیکم الکتاب وہو کرہ لکم, اور ہوا تھا بدر کے موقع پہ بھی کچھ لوگوں کے اندر ایچی بچی ہو گئی تھی. تو اللہ علیم بالظالمین, اللہ سے ظالموں سے خوب باخبر ہے. کس کو ظالم کہا جا رہا ہے ادھر؟ جہاد کرنا کہہ کر نہ کرنے والے. دیکھیے آپ نے امید ہی نہیں دلائی تو کسی کو آپ پہ غصہ ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے کسی ایسے امپلائی کو غصے میں فون کیا جس نے آپ کو امید ہی نہیں دلائی؟ اس پہ آپ کو غصہ آئے گا جو امید دلا کر پیچھے ہو گیا. آج ہم مسلمانوں نے بھی بڑی امیدوں کو توڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. اور حقیقت ہے کہ آج کے مسلمان اگر قرآن کوئی ٹھیک طرح پڑھ جائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اور ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کتاب کو عام کیا جائے. اس سے بڑا انسان کو اپنے دامن میں جھانکنے کا موٹیویشن دینے والا اور کوئی فیکٹر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہانی کو بڑھاتے ہیں. اب اگلی بات دیکھیں نا, پھر اسی سے ملی ہوئی ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ, اور ان سے کہا ان کے نبی نے, کیا کہا؟ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكًا, اللہ تعالیٰ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا. مانگا تھا نا انہوں نے, کہا ٹھیک ہے تالوت لے لے. تالوت کون تھے؟ تورات میں ان کا نام ساؤل آتا ہے, SAUL, ساؤل. کہتے ہیں تالوت قد کے بہت لمبے تھے, تو ان کا ایک صفاتی لقب ہے, یعنی لمبے تڑنگے. یہاں پہلی بات پتہ چلی, فزیکلی فٹ, اسٹرانگ. قالو انا یکون لہ الملک علینا, اب دیکھیے اعتراض شروع. کل تک مطالبے تھے, کوئی لائیے, کسی کو بلائیے, کچھ موقع دیجئے, اب دیا تو اعتراض شروع ہو گئے. بھائی اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہم پہ؟ اب یہاں پھر بہت کچھ ہے, لیکن میں سکپ کرتی ہوں. انا لہو یکون لہ الملک, یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ یہاں کہا پتہ کیا جا رہا ہے اردو میں, اس کو کیسے ہم پہ بادشاہت مل سکتی ہے. یہ جملہ ایسے بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے, لیکن انداز بہت فرق ہے, تنقیدی انداز ہے. کہتے یہ کیسے بادشاہت لے سکتا ہے؟ وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے. نوٹ کیجئے, دل میں یہ چھپا ہوا تھا کہ ہمیں لیڈرشپ ملے, نام بن گیا تھا کچھ اور. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں الیکشن کراؤ تاکہ ہم جیت کے آگے آئیں. یہاں دل میں خواہش ان کے کہتی کہ ہمیں بڑا بنا دیا جائے, نام لے رہے تھے کسی اور کا، تو جب کسی اور کو بنا دیا گیا اعتراض شروع ہو گئے، اور اعتراض برا اعتراض کیا، ولم یوت سات من المالی، یہ تالوت کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں، ان کے اندر پاس تو مالی کوئی نہیں، مفلس ہیں، غربت ہے۔ یہاں سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ان کا کرائیٹیرین کیا تھا، دولت والے۔ آج بھی کہتے ہیں مال جن کے پاس ہے وہی آگے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، اور یہ ہے اصل میں پورے سبق کی کریم، جو اس وقت مسلمانوں کی توجہ کی بہت زیادہ مستحق ہے۔ اور وہ کیا؟ قالا، فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، استفاہ علیکم، چن لیا ہے اس کو تم پر، فیصلہ ہو چکا، ڈیوائن ڈیسیژن ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا۔ وزادہ بسطتم فی العلم والجسم، اور زیادہ کر دیا اس کو جسم اور علم۔ واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنا ملک، اپنی بادشاہت، اللہ کو اختیار ہے جس کو چاہے، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں ذرا سا غور کیجئے لفظ استفاء پہ، چننا۔ عربی زبان میں کسی کو چننے کے لیے مختلف لفظ آتے ہیں، مثلا استفاء، اجتبا، اختارا، سارے لفظ قرآن میں آتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا، مجتبا، مصطفیٰ، ٹھیک ہے؟ یہاں استفاء آیا، بس اب اتنا سمجھ لیجئے کہ استفاء میں آپ کی اپنی 100% چوائس ہوتی ہے۔ صفیہ، اس کا روٹ کیا؟ سواد فا واو، صفائی، کسی چیز کا خالص ہونا، کسی کو اس کی کسی خوبی پہ چننا، آمیزشوں سے پاک کر کے کسی عظیم مقصد کے لیے چننا، اس کو استفاء کہتے ہیں۔ کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی خالص کرنا چاہتا ہے اس کو چنتا ہے، اللہ کے اختیار میں کوئی دوسرا نہیں۔ خیر، دوسری بات اس آیت میں ذرا سی توجہ کیجئے گا کہ دو خوبیاں ہیں جس پہ اس وقت مسلمانوں کو عمل کی ضرورت ہے۔ اسٹرانگ لیڈرشپ لینی ہے، ورلڈ لیڈرز بننا ہے، تو بس تتن فی العلم والجسم۔ اور علم کون سا ہے؟ العلم، روحانی علم، وحی کا علم، دین کا علم اور دنیا کا علم، دونوں ہی آئیں گے مسلمانوں میں، لیکن ساتھ ساتھ جسم۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کو لیڈر بنانا ہونا تو یہ دو چیزیں دیکھ لیں، علمی پختگی ہو اور جسم بھی ٹھیک ہو۔ ایک بیمار شخص ہے، وہ خود بیمار ہے تو دوسروں کو کیا تھامے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دو خوبیاں دی، آج مسلمانوں کو ان دونوں کی ضرورت ہے۔ واللہ، اسٹرانگ پرسنالٹیز اور علم، اور علم بھی وہ جو پورا پھیلا ہوا علم ہو۔ خیر، اب کیا کرتے؟ مان ہی نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک ان کو چھوٹی سی مثال دلوائی ان کے نبی کے ذریعے، تاکہ ان کے دل تو کم از کم جمے، بات تو پھر ہی مانیں گے۔ تو اس کی بات 248 میں ہو رہی ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، اِن نَایَتَ مُلْكِهِ، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ السَّكِينَةُ، کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت جس میں سکینت ہوگی، صندوق ہوگا، تابوت ہوگا، اس کے اندر سکینت ہوگی، ٹھیک ہے؟ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، اور وَبَقِيَّةٌ، بقیہ کہتے ہیں بچی کچی چیزوں کو، باقی ماندہ، مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ، آلِ مُوسَى جو چھوڑ گئے اور ہارون کے آل چھوڑ گئی، آئے گی کیسے؟ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، البتہ اس میں نشانی ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم ہو ایمان والے، اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے نشانی رکھ دی۔ اب یہ کیا آ گئی بات، چونکہ انہوں نے تالوت علیہ السلام کی بادشاہت پہ اعتراض کیا، تو ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری نشانی ان کو دے دی، اور وہ کیا تھی؟ کہ اس کے دور میں تمہیں تابوت سکینہ ملے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تابوت اور تابوت سکینہ کیا ہے؟ تو سمجھ لیجئے، لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق تھا جس میں بنی اسرائیل انبیاء کرام کے تبرکات کو محفوظ کرتے تھے۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ یہ صندوق آج بھی مسجد اقصیٰ کے نیچے ایک سرنگ میں موجود ہے، اور بعض جگہ انہوں نے اس کی پکچرز لے کر ایک ڈاکیومنٹری بھی دکھائی۔ یہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان کے تعمیر کردہ ہیکل کے تہ خانے میں رکھا ہوا تھا، اور وہیں پر جو ان کے ربی ہیں نا، ربائز، موجود رہتے تھے۔ جب اس ہیکل کو گرایا گیا تو وہ اسی میں دب گئے۔ वो तय खाना चारों तरफ से बंद हो गया और इनकी लाशें और ताबूत सकीना उसी के अंदर महफूज हो गए। बनी इसराइल की रूहानी तस्कीन का सामान था। याद रखिए, जो कौमें नबियों का पैगाम भुला देती हैं ना, वो उनके तबरुकात की हिफाजत में लग जाती हैं। लिखे इस जुमले को, नबियों का पैगाम भुलाने वाली कौमें उनके तबरुकात ढूंढती रहती हैं। हजरत मूसा का सा था, वो अलवाह थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे दी गई, तौरात जिनमें लिखी हुई थी। बनी इसराइल को ऐसे तस्कीन होती थी उन तख्तियों को देखकर जैसे आज हमें खाना काबा को देखकर होती है। तो इसराइलियों को जब उनके पड़ोसी मुल्कों ने शिकस्त दी तो ताबूत सकीना छीन कर ले गए। पूरी कौम ने इस अजीम सानहे पर मातम किया और इसे बनी इसराइल से सारी इज्जत और वजाहत छीनने की एक किस्म की ताबीर दे दी कि अब देखना हमारी इज्जत चली जाएगी। हौसले टूट गए। अब जबकि बनी इसराइलियों ने जंग का इरादा किया और वक्त के नबी हजरत शमूएल ने तालूत को इनका अमीर मुकर्रर किया, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से हम हुए थे, तो कहा कि देखो चलो अल्लाह के हुक्म से ताबूत सकीना तुम्हें वापस मिल जाएगा। ये बड़े खुश हुए। तहमिलुहुल मलाइका, दो फरिश्ते आएंगे लेंगे, और ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने दुश्मनों से इस ताबूत सकीना को निकलवाया। उसकी एक लंबी कहानी है जिसकी आपकी मुझे जरूरत नहीं है। बहरहाल इनको वाकई वो ताबूत सकीना मिल गया। इन नफी जालिका लाया। बाद में बनी इसराइल उस ताबूत सकीना को अपने साथ रखते थे, जहां जंग लड़ते पहले ताबूत सकीना रखते। तो कहते अब इसकी बरकत से हमें फतह होगी, और कहते हैं फतह हो जाती थी। बहरहाल तबरुकात की एक अपनी हैसियत है, लेकिन यहां आप देखिए कि लफ्ज ताबूत और सकीना दो लफ्ज हैं इसमें। ताबूत क्या होगा, आप नोट कर सकते हैं जरा से इसका रूट ढूंढना चाहें तो, अगर आप लोग थोड़ा सा अपना टेस्ट को मुश्किल करना चाहें तो देख लें। ताबूत का रूट क्या होगा, ताबूत का रूट ताबूत ही है। ये पूरा एक लफ्ज है, संदूक को कहते हैं। कल्ब और सीना, कहते हैं कि दिल जिस चीज को देखकर मुतमईन हो वो ताबूत था, इस्तकामत मिलती थी। इसी तरह से बाज कहते कि ये ताबा से भी है, तौबा। ताबा या तुबू किसको कहते हैं, तौबा करने, यानी तौबा करते हुए वो इसकी तरफ आते थे। और सकीना का लफ्ज सकना से सुकून, वही है जो उर्दू में भी हम बोलते हैं लफ्ज। खैर मान गए, अब यहां तक स्टोरी कहां पहुंची है कि कम अज कम बादशाह पे मुतमईन हो गए हैं कि ठीक शख्स आया, लीडर पे मुतमईन हो गए। अब आखिरी मार्क है। कहा क्या था कि हमें बादशाह क्यों मिले, ताकि हम उसके साथ मिलकर दुश्मन से मुकाबला करें। अब देखिए लास्ट राउंड है कहानी का, आयत नंबर 249। फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद, फिर जब तालूत अपने लश्करों को लेकर चले, क्यों निकले जंग के लिए, फसला का लफ्ज आया ना, खास तौर पे जंग के लिए निकलने की बात है। जुनूद क्या है, जुंदुन की जमा। जुंद किसको कहते हैं, लश्कर को। कुरान में आएगी ये चीज आगे बहुत जगह इंशाल्लाह ताला। खैर फिर क्या हुआ, निकल पड़े, लेकर चल पड़े। फलम्मा फसलत तालूत बिल जुनूद, जुनूद लश्करों को लेकर चल पड़े। काला किसने फरमाया, तालूत ने। अब लीडर को हक है ना कि वो उनसे कुछ बात करे, उनको कुछ ना कुछ तो कहे। इन्नल्लाह मुबतली कुंभी नहर, बेशक अल्लाह आजमाने वाला है तुमको एक नहर से। मुबतली क्या है, बला से। उर्दू में हम बोलते हैं मुबतला होना, यानी इनको पहले से बता दिया कि अब तुम्हारी आजमाइश होगी एक दरिया से। दरियाए उर्दन था रास्ते में, लिख लें। ये कौन सा दरिया था, दुश्मन के और इनके बीच में, उर्दन, जॉर्डन रिवर। फमन शरीब मिन्हु फलैसा मिन्नी, तो जो इसमें से पेट भर कर पानी पी ले वो मेरा साथी नहीं है। क्योंकि जो बहुत पेट भर के पिएगा तो चलेगा कैसे, फिर उसको वॉशरूम यूज करना पड़ेगा। हाँ वमल्लम यत अमहु फइन्नहु मिन्नी, फिर जो इसमें से पानी नहीं पिएगा वो मेरा साथी है। हाँ मगर जीना तो है। इल्ला मन इग्तरफ गुरफतम बियदी, सिवाय इसके कि कोई अपने हाथ से सिर्फ चुल्लू भर पानी पी ले। देखिए हर कमांडर अपनी फौज को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, जोश जज्बा आजम देखने के लिए, मॉरली वो कितने स्ट्रांग है, डिसिप्लिन में है। इस तरह नबी सल्लम ने भी गज़वे बदर से पहले मुसलमानों को गाइड किया था। एक तरफ से एक लश्कर आ रहा है, दूसरा उधर से आ रहा है, तुमने इधर से नहीं हटना, वो नहीं करना, ये है वो, हर लीडर है। तो असल में ये आजमाइश थी। हुआ क्या, फशरीबू मिन हो, तो उन्होंने इसमें से खूब जी भर कर पी लिया। इल्ला कलीला मिनहु, दूसरी बार आ गया आपके सबक में, थोड़े ही लोग थे जो बच गए। फलम्मा जावजहू हुआ, अब रुकिए जरा, बस जब वो पार हुए, हु कौन, हुआ, जावजहू हुआ, वल्लजीना आमनु, बताइए जरा जावजहू क्या है, दरिया, और हुआ कौन है, तालूत, और वल्लजीना माहू उसके साथ ईमान वाले, यानी तालूत अलैहिस्सलाम और ईमान वाले चल पड़े, और आपको था कि कितने पी गए पानी, सारे ही पी गए, बचे कितने, 313। वो हजारों साल पीछे के वाक्य में भी वही फिगर आ रहा है जो कि आपको गजवा बदर में दिखेगा। असल में सहाबा की अपलिफ्टिंग की जा रही थी कि वहां सिर्फ 313 लड़े तो जीत गए, तो बदर की जंग में तुम हिम्मत ना हारना, तुम भी थोड़े हो गए तो जीत जाओगे। खैर सब आगे निकले, फलम मा जावजा हुआ वल्लजी नामनुमा हु, जब दरिया पार करके आगे बढ़े तालूत और इनके साथी, तो क्या हुआ, कालू ला ताकत लनल यौम अभी जालूत, कहने लगे हमारे अंदर तो ताकत ही नहीं आज जालूत के मुकाबले की, वजनूदी ही और उसके लश्करों की, हिम्मत किन की टूटी, जरा सा यहां रुक के जरा समझिएगा। देखिए पहली स्क्रीनिंग कब हुई, दरिया का पानी पीने के वक्त पे, जो कुछ तो पहले किताल के मुनकर हो गए ना कि हमने लड़ना ही नहीं, वो अलग हो गए। अब दूसरे वो हैं जो पानी पी चुके और बेसुद हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे गजवे उहद में शुरू में नबी सल्लम के साथ 1000 आदमी निकले थे, फिर ऐन वक्त पर 300 लोग छोड़ गए मुकामे शौत पे अब्दुल्ला बिन उबई के साथ, जो 707 गए थे उनमें से 50 लोग टीले से हट गए, वही बताया जा रहा है कि चुने हुए लोगों में से भी बाद में लोग गिर जाते हैं, बड़ी खतरे की बात है, मेरे लिए तो बहुत ही खतरा है। मत सोचें कि आज अल्लाह ने आपको अपने काम के लिए चुना हुआ है, किसी एक हवा में आप भी गिर जाएंगे, कोई जरा सीम आएगा सबसे पहले आप उतर जाएंगे। इस रास्ते में जो काम करना है ना वो अब आगे देखिएगा। याद रखिए अल्लाह का रास्ता दुआओं के बगैर नहीं तय होता। मैं मन ना करूं कि मैं 4-5 साल 6 साल से आपको पढ़ा रही हूं, कोई साथी के मैं तो इधर 8 साल से काम कर रही हूं, मैं ये कर रही, नहीं, किसी वक्त भी हम गिर सकते हैं, एक हवा चलती है और बंदा गिर जाता है, और अच्छा बंदा गिरता है, खराब नहीं गिरते। इसीलिए आगे देखिए, قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, उन लोगों ने कहा जो गुमान रखते थे कि हम अल्लाह से मुलाकात करेंगे, हिम्मत बंधाई, जब देखा कि बाकियों की हिम्मतें टूट रही हैं, तो जो ईमान वाला गिरोह था वो फौरन खड़ा हो गया और क्या कहा, कम मिन फियतन कलीलतन गलबत फियतन कसीरतन, कम हाउ मेनी टाइम्स, मुराद बहुत दफा ये हुआ, छोटी सी जमात गालिब आ गई बहुत बड़ी जमात पे, कैसे, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, और वल्लाहु, और अल्लाह ताला कौन है, माल बोलिए, और अल्लाह सुभाना ताला है माल साबरीन, सबर करने वालों के साथ। ये सबर करने वाले कौन है, जो अल्लाह के रास्ते में आखिरी दम तक जमे रहे, सांस ही जाएगी तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, ये घड़ी देखकर आने वाले, वक्त देखकर जाने वाले, कब होगा कब शुरू कब खत्म, नहीं, ये वो लोग हैं जिनके दिल दिमाग पड़े। और देखिए जब बहुत सारे गिरोह की हिम्मत टूटे तो चंद लोग उनको खड़ा कर लेते हैं, ओके चलो शाबाश, अब देखिए कोई गिरता है ना तो एकदम रोता है, तो वो कहते हैं नहीं उठो उठो शाबाश तुम चल सकते हो, तो इससे पता चलता है हर गिरोह में ऐसे लोग होने चाहिए जो हिम्मतें टूटने के वक्त पे लोगों को खड़ा कर सके, लोग खड़े हो गए। वलम्मा बरजुली जालूत वजनूदी ही, और जब वो मुकाबले पर निकले जालूत और उसके लश्करों के, ये जालूत कौन है, दुश्मन कौम का सरदार, पहले कौन थे तालूत, ये जालूत, आमना सामना हो गया। बरजा का जो लफ्ज आया ना, ये जाहिर होने और आमने सामने आने के लिए आता है, खासतौर पर मैदान जंग में। قالوا ربنا افرغ علينا صبرا, ये दुआ जुबानी याद कर लें, स्पिलुल जना कोर्स में हमने डे वन में लोगों को इस्तकामत की दुआएं पढ़ाई थी, आज तक हर ऑनलाइन कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं पढ़ाई जाती हैं। हिदायत के रास्ते पे सबसे जरूरी चीज इस्तकामत होती है। खाना पका रहे हैं पका रहे हैं पका रहे हैं, लेकिन कच्ची हंडिया में भी कसर है तो बंद कर दें तो मिला तो कुछ नहीं। और ये सबसे मुश्किल सिनेरियो, मैं अक्सर कहती हूँ अल्लाह के रस्तों में मजा भी आता है, अल्लाह के रस्तों में सुकून भी मिलता है, इत्मीनान भी मिलता है, सिर्फ निकलना मुश्किल है, एक दफा निकला है आसान, बट जो सबसे खतरनाक चीज जिसका खतरा रहता है वो क्या होती है कि इस्तकामत ना रही। बर्फ आ जाएगी, इस्तकामत नहीं रहेगी, गर्मी आ गई, इस्तकामत नहीं, सर्दी आ गई, इस्तकामत नहीं, मेहमान आ गए, इस्तकामत नहीं, बीमार हो गए, इस्तकामत नहीं, ये हो गया, वो हो गया। कल मैंने एक बड़ी दिलचस्प वीडियो देखी है, उस वीडियो का खुलासा क्या है कि चाइना का कोई स्कूल है और उन्होंने बताया कि जो सीकर्स ऑफ नॉलेज होते हैं वो कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं। अब अल्लाह जाने उसकी क्या हकीकत है, लेकिन वीडियो मौजूद है, आप रिसर्च कर लें बाद में। एक ऐसी जगह है, उसका नाम भी लिखा हुआ था उन्होंने, कि बच्चों को स्कूल में जाने के लिए किस किस मरहले से गुजरना पड़ता है। पहले वो दिखाते हैं कि बच्चे क्लाइम कर रहे हैं पहाड़ पे, ना वो रस्सियां डली हुई हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बस्ते पीछे लटकाए हुए हैं, तो बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसको अबूर करते हैं। फिर आगे उन्होंने दिखाया हुआ कि एक छोटा सा दरिया है और उसके ऊपर रोप है, तो बच्चे, दो दो बच्चे लटक के उस रस्सी से वो दरिया को पार करते हैं। फिर उसके बाद आगे वो छोटा सा कोई पाँव, छोटा सा वो नहीं होता जैसे दरिया सा कह लें, तो छोटी छोटी प्लास्टिक की बास्केटों में बैठे हुए हैं बच्चे और हाथों से चप्पू बना के तो वो हिस्सा कवर करते हैं। तो फिर उसके बाद वो निकल के जाते हैं तो सामने स्कूल होता है, तो उसमें लिखा था कि इधर आने के लिए बच्चों को 2 घंटे की ये सारी मशकों से दिन में 2 बार गुजरना पड़ता है, फिर वो पढ़ने आते हैं। मैंने कहा ये तो आपके लिए आई है और मेरे लिए आई है। आपके मेरे घर के रास्ते में ना पहाड़ है, ना दरिया है, और ना कोई समंदर है, कुछ है, थोड़ी सी बर्फ भी है तो क्या है, वो तो अल्लाह ने प्यार किया आपके साथ कि आपके पाँव पे मट्टी ना पड़ जाए। कितनी चमकती हुई बर्फ के ऊपर हम पाँव रखते हैं, मेरा तो सजदा करने को दिल करता है, लेकिन इतना प्यार आता है कि अल्लाह लोगों के रस्तों में मट्टी लगती है, हमारे बर्फ लगती है, और इस बर्फ का नाम लेकर हम आना छोड़ दें या घर बैठ जाएं और आज मौसम खराब है, तो ये तो फिर हमने नॉर्वेजियन होने का हक ही ना अदा किया। राइट और रॉन्ग, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को लोग कहते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ना सिखाते हैं, मौसम की शिद्दतों में जाते हैं, करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने इधर रहना, तो हम क्यों इतने नखरों वाले हैं। छींक आती है तो हम घर बैठ जाते हैं, नहीं बीमार है। यही अल्लाह दिखा रहा है कि रब्बना फ़रिग अलैना सब्रम, ए रब पोर कर दे। मैं लफ्जों पर नहीं जा रही, हालांकि लफ्ज अफ्रिग बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, फारग फारिगी हो जाए, सारे ही डाल दे हमारे ऊपर, अलैना सब्रम यानी सब्र का आखिरी घूंट भी हमें पिला दे, बस अब भी तक दाम मना और हमारे कदमों को जमा दे, वन सुरना लल कौमिल काफिरीन और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ये है आज के मुसलमानों को करने वाला काम, कोशिश पूरी, स्ट्रांग लीडरशिप, जिस्मानी वसत, इल्म की पुख्तगी और दुआ। ना आप सिर्फ दुआओं से इस वक्त इस्लाम को गालिब कर सकते हैं और न सिर्फ अपनी जाहरी तालीमात को बढ़ाकर, ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा तो फ़हज़मो हम भी इसने ला I-251। बस उन्होंने मार भगाया उनको अल्लाह के हुक्म से, हज़मू शिकस्त दे दी, वक़तल दाऊद जालूत और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को। ये कहां से आगे भाई, अभी तक पूरी कहानी में नहीं थे, तो ये तालूत की फौज के एक आम सिपाही थे, ये वही दाऊद हैं जो बाद में हजरत दाऊद बने, नबी भी थे और बादशाह भी थे, इन्हीं के बेटे सुलेमान थे। तौरात से मालूम होता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम गडरिये थे यानी बकरियों को चराते थे, जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चराया करते थे। इनके पास एक गुफिया था जिसके अंदर पत्थर, गुफी पता क्या होती है, गुलेल, पत्थर रख के मारते हैं, कहते हैं पत्थर रखकर घुमारते, ऐसा निशाना मारते कि निशाना बिल्कुल सीधा जाके लगता, और जब अपनी बकरियों की हिफाजत करते थे तो जंगली जानवरों के जबड़े तोड़ दिया करते थे। अल्लाह का हुक्म देखिए कि इनको मौका मिल गया तालूत के लश्कर में आने का, मैं अब यहाँ बड़े इंजॉय कर रही हूँ, टैलेंट इनका इस्लाम को मिल गया। ये तो अपने दुनिया के टैलेंट में खोए हुए थे ना, कि इनको अल्लाह ने वाकई निशाना दिया। जी कोई आज के दौर में फौज वैसे नहीं थी जैसे यहाँ फौजी पढ़ के बनते हैं, जब नबियों का दौर था राह जाते लोग भी जमा हो जाते थे, फौज बन जाती थी, तो ये गडरिए थे बकरियां चराते चराते, अल्लाह ने पकड़ कर उनको उस लश्कर में बुला लिया। इनकी स्किल्स लगी इस्लाम में, इन्होंने, वो कहते हैं कि जो जालूत बादशाह था ना, जब वो मैदान जंग में आता था ना, पूरा सर से पांव तक असलहे में लोहे में झगड़ा होता था, क्योंकि जंग में डर होता है ना कि कहीं तीर लगा तलवार तो लोहा बजाएगा, सिर्फ एक आंख खुली छोड़ता था। कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम ने, उस वक्त नबी नहीं थे, आम गडरिए थे, कैसे अल्लाह ने हमें चुन के कहां बुला दिया। आप और मैं इस वक्त कुरान पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमने कौन सी इचल बिचल पढ़ रहे होना था और हमें कुरान का पता भी ना होता, हम तो खो जाते कहीं भी। कहते हैं कि इन्होंने गुलेल से एक ऐसा निशाना मारा सीधा जालूत की आंख के अंदर घुसा, इधर से दिमाग के रास्ते बाहर निकल गया, उसी से उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंटली लीडर बने। अल्लाह ने आज भी मुसलमानों को ऐसे लीडर देने हैं, ये मेरी बात लिख ले। जिस दिन हम मुसलमान डिजर्व करेंगे ना, हम अल्लाह को शो करेंगे ना कि हम हैं असल मुसलमान, कि जिनके लिए फरिश्ते उतरे, ऐसा लीडर मिलना है हमें पूरी दुनिया में कि उमर बिन खत्ताब की याद आ जाएगी इंशाल्लाह लोगों को। अब इतना बड़ा काम हुआ, जब दुश्मन फौज का सरदार मारा गया, पीछे सब खत्म। कहते इत्तफाकन ही उधर आ गए, देखा जालूत को ललकारा जा रहा है, सब सहमे हैं, खड़े हुए हैं, इनकी गैरत को जोश आ गया। देखिए जिनसे अल्लाह ने अपने काम लेने होते हैं वो कोई बहुत लंबे प्रोटोकॉल वाले नहीं होते, वो कभी कभी गिरती दीवार को थामने आते हैं, फिर वो आपकी दीवार बन जाते हैं। ये अल्लाह ताला की शान है। और इस तरह से उन्होंने बगैर किसी प्रोटोकॉल के उस काम को लिया और अल्लाह ने करवा दिया। ठीक है, हो गया, अल्लाह ने करवा दिया। और वहां से फिर यही बात हो गई। कहते वहां बड़ी डिटेल्स हैं, उन्होंने उस वक्त अपनी जो जुर्रत दिखाई, बहादुरी दिखाई, उसको देखकर वो जो बनी इसराइल थे उनका भी जज्बा बढ़ गया और जालूत मारा गया। वाताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा वल्लमहु मिम्मा यशा। कौन थे दाऊद? कि अल्लाह ने इनको सल्तनत और हिकमत अता की और जो कुछ चाहा उनको सिखाया। तालूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह दाऊद से कर दिया। देखिए उस दौर के नबियों का क्राइटेरियन, हम होते किस मुल्क के सरदार, बादशाह, किंग या क्या बोलते हैं उसको, प्रिंस, नहीं कहा इसमें तो बड़ी गड्स है, दामाद बनाते हैं। जब उन्होंने इनको अपना दामाद बनाया, अब क्या हुआ? जब तालूत अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने लगे तो दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी जगह बादशाह बन गए। हजरत यूसुफ को याद करें, वो कैसे नबी बने और नबूवत से बादशाहत पे आ गए। यहां देखिए दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे बने और इसके बाद फिर दाऊद नबी भी बन गए। ये पहला मुकाम था कि जब नबूवत और बादशाहत एक खानदान में आ गई बनी इसराइल में। ये है बेस्ट टाइम जो मैंने अभी शुरू में लिखा है ना, तालूत, दाऊद और सुलेमान। अब यहां से इनका वो दौरे खिलाफत रास्ता शुरू होगा। और अल्लाह ने अपनी सुन्नत बता दी आखिर में कि वलौला दफुल्लाहिन्ना सबादहुम बिबात। अगर अल्लाह बाज लोगों को बाज के जरिए से हटाना ना दे, लफसदतिल अर्दु, अलबत्ता फसाद फैल जाता जमीन में, वलाकिन्नल्लाह लजू फदलिन अलल आलमीन, अल्लाह तो तमाम जहानों पर बड़ा फजल करने वाला है। ये कौन से फसाद की बात है? जालूत और उसके लश्करों का। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि कुफर का सर अब टूटेगा बदर के मैदान में आकर आपके और आपके साथियों की निस्बत से। जंगों का एक ये भी मकसद होता है कि जमीन से शर अमेज लोग चले जाएं और दुनिया सुकून का जरिया बने। और आखिरी आयत पारे की तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक, ये अल्लाह की आयात है जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं हक के साथ, बिलहक की। وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, और आप तो रसूलों में से हैं। यानी अब नबी सल्लम को उधर से जोड़कर इधर, जैसे स्टोरी सुनाते सुनाते फिर एंड पे जिसको सुनाई जाती उससे कहा जाता है मजा आया आपको, इंजॉय किया आपने, आपको इससे सबक मिला। तो आप देखिए कितना क्लियर वाक्य है सारी बात में हमारे आपके लिए, क्या कि आज दोबारा एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। आज के दौर में मुसलमानों को इल्म और अपने अंदर वसत नजरी लानी पड़ेगी और अल्लाह के रास्ते में जान माल वक्त देकर दुनिया को सिर्फ एक मुट्ठी भर। कब्जा का लफ्ज पढ़ा था ना, कब्जा कहते इतनी चीज जो पांच उंगलियों के बीच में आ जाए, ये ना मुट्ठी, इसको कब्जा कहते हैं उर्दू में, कब्जा। तो यक बिजू यानी पांच मुट्ठी के, इसके अंदर जो आ जाए बस वो है। पानी कितना पीना है, बिकब्दा यानी बस दुनिया इतनी सी ले लो। यही आज उम्मत मुस्लिमा को कहा जा रहा है कि इस दुनिया में पौना फैलाओ, बस एक कब्जे जितनी जगह तुम्हारे अंदर आ गई दुनिया, गुजारा कर लो, वक्त के साथ गुजार लो, इंशाल्लाह फायदा होगा, अल्लाह तुम्हें देगा। कल भी यही अल्लाह का असूल था, आज भी अल्लाह सुबहान तआला की यही सुन्नत है। हम जितना मर्जी प्रोलोंग कर लें मुसलमानों के इस सवाल को और हम जितनी जल्दी बुला लें, तरीका एक ही है। तो अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से अपने इन सारे मामलात को लें और जहाँ जिस्मानी और रूहानी स्ट्रांगनेस की बात भी है। हज़रत उमर का एक कॉल है, कहते हैं तफक्काहु कबल अन तुसव्वदु, सरदार बनने से पहले समझदार बनो। जिसको शौक है ना कि मैं कुछ बड़ा काम करूं, देखिए इसमें बुरे मानों में नहीं है कि हाँ नहीं, मुझे नहीं लीडर बनना, नहीं मुझे फलां ऑर्गेनाइजेशन के बड़े ना बनाए, नहीं, मुराद है कि कुछ बड़ा करना चाहते हो। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको शौक है कि आपको बड़ा काम करें? मुझे तो बड़ा शौक है, मैं तो कहूंगी अल्लाह मुझसे को बड़ा काम ले, तो मुझे उससे पहले समझदार बनना पड़ेगा। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी फरमाते हैं, बादन तसव्वदु, सरदार बनाए जाने के बाद भी इल्म हासिल करो। ये बुखारी की रिवायत है। इल्म के बगैर आप में कुछ नहीं है। आज मैं पढ़ना छोड़ दूं तो मैं आपको पढ़ाने का हक नहीं अदा कर सकती। इल्म की यहां फजीला समझ आ रही है कि इल्म के और जिस्मानी शुजात भी हो, मुदाफत की कुवत भी हो, छोटी सी मुखालफत हमारी होती है, हम यूं भीग के बैठ जाते हैं जैसे बिल्ली बैठ जाती है बारिश में, नहीं, आपको स्ट्रांगली रिजिस्ट करना आ जाए, ये मुराद है। और इस तरह से आप देखें कि इस एक वाक्य में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के आज के दौर के कई पोल खोल दिए हैं। वो ताबूत सकीना के पीछे भागते थे, हम नक्शे नालीन लेके फिर रहे हैं, हम नबी की दस्तार और चादर और आपके बालों की हिफाजत करते फिरते हैं, दुश्मन मुसलमानों को गाजर मूलियों की तरह काट रहे हैं और हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपने आप को जमा कर अपने आप को बड़े मुसलमान बनाते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आज के मुसलमानों को हकीकी मानों में मुसलमान बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व तुबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, आमीन।
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.